الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو ازدواجی زندگی نکاح شادی یہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے صرف نہیں نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی ایک شادی شدہ مرد اور عورت کی زندگی میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ مرد عورت یعنی یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو سب سے دیر تک یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے لڑکا اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اور لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑکا لڑکی اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنی دیر رہیں گے 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال تو اس میں بھی جو پہلے 5-10 سال ہیں وہ تو بچپن کے ہوتے ہیں اور جب ہوش آتی ہے اور جب بیٹھ کے اپنے ماں باپ سے اور اپنے بہن بھائیوں سے باتیں کر سکتے ہیں وہ تو زمانہ ہی 10-15 سال کا ہوتا ہے 10 سال کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لڑکا یا لڑکی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد 50-60-70 سال بھی یعنی اور 90 سال تک بھی سننے میں آیا ہے کہ پھر یہ ان کا میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یہ سب سے لمبا رشتہ ہوتا ہے اکٹھے رہنا تو یہ سفر ہے تو سفر کے اندر کئی دفعہ ایسے صاحب اور ایسے ساتھی مل جاتے ہیں جن کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے چھوٹے سے چھوٹا سفر ہو 3 دن کا سفر ہو 4 دن کا سفر ہو ہفتے کا ہو महीने का हो, हज का हो, उम्रे का हो, कोई भी सफ़र हो, तो कोई साथी मिल जाए उस ग्रुप में अपने साथ, तो उसकी हर ऊंच नीच को, हर चीज़ को, उसकी बुरी और अच्छी आदत, बुरी आदतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये मियाँ बीवी रात दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं 50 साल 60 साल, तो ये रिश्ता एक ऐसा है कि एक दूसरे की खुशी गमी में एक दूसरे का साथ देते हैं, और ये रिश्ता एक ऐसा है कि इसमें एक दूसरे का तआवुन करते हैं अपने दीन में। हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हदीस इधर मेरे पास है, मैं उसको बयान कर देता हूं। कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर अल्लाह पाक रहम फरमाए, यानी अल्लाह तबारक तआला रहमत भेजे उस पर, जो आदमी रात को खड़ा होता है नमाज में और अपनी बीवी को, घर वाली को भी उठाता है नमाज के लिए, और अगर वो ना उठे तो ये उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है उसको जगाने के लिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी, ये दुआ है आपकी, और ये दुआ तो क्यामत तक रहेगी। ये ऐसी तो कोई दुआ नहीं है कि बस उस वक्त दुआ कह दी अस्तग़फिरुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक दुआ है, सही हदीस है ये, और क़यामत तक ये दुआ हर उस मर्द के लिए है कि रहीम अल्लाह, अल्लाह पाक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए रहीम अल्लाह, अल्लाह पाक रहम करे, रहमत करे उस बंदे पर और उस औरत पर, अल्लाह पाक रहमत करे जो औरत रात को नमाज में खड़ी होती है और अपने खविंद को भी उठाती है, यानी उसको भी इस काम में लगाती है, और अगर वो ना उठे तो उसके मुंह पर पानी से छींटे मारती हैं। तो ये हदीस शरीफ है, सही हदीस है, कितनी ज़बरदस्त हदीस है कि इसमें बताया ये जा रहा है कि नमाज का एक अमल ऐसा है कि इसमें मर्द औरत एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे की मदद करते हैं इस काम में। और इसकी कई मिसालें हैं, सफ़र पर आदमी जा रहा है, मियाँ बीवी है, सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, मोटरवे पे हैं, तो रास्ते में वक़्त हो गया नमाज का, जोहर का है, असर का है, मगरब का वक़्त है, तो उनमें से एक थोड़ा सा कमज़ोर है और एक मज़बूत है अपनी नमाज में। तो ये मर्द जो मजबूत है अपनी नमाज में या औरत मजबूत है अपनी नमाज में, तो उनमें से एक तो एक दूसरे को कहेंगे, ये अब डिपेंड करता है कि गाड़ी कौन चला रहा है, तो जिसके हाथ में वो, यानी कि गाड़ी है, अब अगर वो सुस्त है तो दूसरा इंसान उसको कह रहा है, मसलन बीवी है, उसने कहा कि देखो खामिन साहब यहाँ हम, जो भी उसको कहती है, रोक लें गाड़ी, मैंने नमाज पढ़नी है और आप भी पढ़ लें। अब उसके हाथ में गाड़ी है, वो नहीं रोक रहा, ये गुनाहगार होगा शख्स कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, आगे पढ़ लेंगे, मंजिल पे जाकर पहुँच, वो बार बार कह रही है, और ये फिर गुनाहगार होते हैं। उसने अपना काम किया कि अपना फ़र्ज़ अदा किया कि देखो गाड़ी रोक लो, नमाज तो पढ़नी है, नमाज से तो कोई छुटकारा नहीं, कज़ा हो जाएगी, गुनाहगार होंगे। तो ये है एक दूसरे की मदद करना। अब इसका ये काम है कि चलो कम अज़ कम इसने, आप तो नमाज नहीं अगर पढ़नी, इसका दिल नहीं अभी पढ़ने का, जो बहुत बड़ा गुनाह है, कि फरमाया कि जो, यानी मुसलमान और काफिर के दरमियान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, चलो कम अज़ कम इसका दिल नहीं है तो गाड़ी उसके लिए तो रोक ले। तो ये है ज़िंदगी का सफ़र। और इसी तरह अगर औरत है चला का दिल नहीं है, मर्द का दिल है कि गाड़ी रोकी और नमाज पढ़ ली, इसी तरह रमज़ान का महीना है और मर्द घर आता है, औरत का उस दिन तबीयत सही नहीं है, उसने रोज़ा रखा हुआ था, उसके इफ्तारी नहीं तैयार कर सकी, तो अब ये इसको एहसास होना चाहिए उसका, और उसके गम में शरीक होना चाहिए या उसके दुख में शरीक होना चाहिए कि देखो तेरा भी रोज़ा था मेरा भी रोज़ा था, तो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, सारा दिन तूने खाना बनाया, तो चलो ऐसे करते हैं कि चलो मैं बना लेता हूँ या बाहर से मंगवा लेते हैं। तो ये है एक दूसरे का एहसास करना। और मर्द को या औरत को चाहिए कि वो कभी इसको छोड़े ना, क्योंकि लड़ाई होती है जब एक तरफ से होता है मगर दूसरे का भी वही मिजाज होता है, तो फिर वो भी वही करेगा ना। जिसका मिजाज है कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना, तो अगला जितना मर्जी बुरा करता रहे। लड़ाई होती है जब मर्द ने कुछ किया, औरत कहती तू मेरा एहसास नहीं करती, अब वो औरत कुछ करती है फिर मर्द कहता तू मेरा एहसास नहीं करती, तो ये काम चलता रहता है, हत्ता कि फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि शुरू किसने किया, ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई है। तो होता है दोनों हाथों से ताली बजती है कि मर्द भी कई दफ़ा बहुत खफा होता है कि तुझे मेरा एहसास नहीं है, चुनाचे मुझे तेरा भी एहसास नहीं है। तो चलो अगर एक को एहसास नहीं है तो दूसरा अल्लाह को अपना खालिक मालिक मानते हुए वो अपना एहसास करता रहे या करती रहे, क्योंकि उसको उसका अजर मिलता रहेगा। तो ये ज़िंदगी है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का साथ देना और चलते रहना ज़िंदगी के अंदर। हज का मौका आया है तो हज साथ कर लें, उम्रा है उम्रा साथ कर लें, और रमज़ान के महीने, ये सारी चीज़ें यानी आमाल जो हैं दीन के आमाल, इनको और अपनी औरतों को जमात में भी ले जाएं। तबलीगी जमात में अगर खुद आदमी जाता है 3 दिन 10 दिन चिल्ला 4 महीने लगाता है अल्लाह के रास्ते में दीन सीखने के लिए घर से निकलता है, तो मस्तूरात की जमात होती है, औरतों को भी घरों में तालीम करनी चाहिए, औरतों को तालीम करनी चाहिए घरों में, फजाइल अमाल या कोई भी हदीस की किताब लेकर बैठ जाएं और घर में बच्चों को और औरतों को सिखाएं। ये इससे पूछा जाएगा, हर जिम्मेदार से पूछा जाएगा, बाप से पूछा जाएगा कि तूने अपने घर वालों को क्या सिखाया, क्या बताया, ये तेरी जिम्मेदारी थी। उस्ताद की जिम्मेदारी है कि तूने अपने तलबा को क्या सिखाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यानी कि बाप के जिम्मे होती हैं कि वो हर चीज़ का ख्याल रखे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बैठ के नमाज़ पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत फरमाते, और फिर जब कुछ आयात रह जाती तो खड़े होकर उनको पूरा कर लेते, फिर रुकू फरमाते सजदा, और इसी तरह फिर दूसरी रकात में रसूलुल्लाह सल्लम बैठ जाते। और ये हर दफ़ा नहीं, यानी ऐसे भी होता कि आप रसूलुल्लाह सल्लम बैठ कर तशरीफ़ फरमा होकर अपनी तिलावत फरमाते फिर खड़े हो जाते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि जब नमाज ख़त्म हो जाती तो फिर देखते कि मैं यानी जाग रही हूँ और बेदार हूँ, तो अगर तो मैं जाग रही बेदार हूँ तो मेरे साथ फिर बातें करते, दिल लगी यानी बातें करते, और अगर देखा कि मैं सो गई हूँ तो आप भी फिर लेट जाते आराम से, यानी आप भी लेट जाते सोने की तैयारी, वरना अगर आप आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठी हैं तो बातें कर लेते हैं। ये मैंने पिछले हफ्ते भी एक बयान किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा ताल्लुक था, वो तो खैर भी मिसाल है, वो तो उसकी कोई मिसाल नहीं कायम कर सकता, और हदीस भी पाने पाक मैंने पढ़ी थी पिछले हफ्ते कि जो आदमी अपने घर वालों के साथ है वो सबसे अच्छा इंसान है। और फिर चंद बातें करके फिर आगे फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में वो भी बयान करना है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये लंबा मज़मून है, कई कई हफ्ते बयान किया जाता है, इसलिए ये सारे मज़ामीन को थोड़ा थोड़ा मुख्तसर बयान किया जाता है, क्योंकि यहाँ तो हम ये पूरा कोर्स नहीं कर सकते बैठ के कि घर के अंदर कैसे रहन सहन होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे इंसान को अपने यानी बच्चों के यानी उनके हकूक क्या है, काफ़ी लंबी इसकी फहरिस्त है, लिस्ट है, عورت کا حق ہے کہ وہ خیانت نہ کریں. جو قرآن پاک کی آیت میں نے پچھلی ہفتے پڑھی تھی, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, عورت کے بھی حق ہیں اپنے کہ وہ خیال کرے کہ جب اس کا مرد باہر ہے تو اپنا بھی خیال کرے کہ بغیر اجازت کے باہر ادھر ادھر نہ جائے. بے شک اس کو فون کر کے بتانا پڑے خاوند کو. عورت کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے بغیر پوچھے, بغیر بتائے. بہت غلط بات ہے عورت کا باہر ایسے جانا کہ پتہ ہی نہیں ہے مرد کو کہ عورت کہاں ہے, کہاں ہے عورت اس کی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ خواتین کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اور پھر دوسرا گھر کا دیکھ بھال کرنا کہ کوئی نقصان نہ کرے, مال کا خیال کرنا, بچوں کا خیال رکھنا, اپنے دین کا خیال رکھنا, اپنے ایمان کا, اسلام کا. یہ ہے فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, ایماندار عورت. تو اگر یہ خیانت کرتی ہے پھر وہ جو میں نے پچھلے ہفتے بیان کی تھی کہ اس کو پھر آپ نے واعظ یعنی فاعظوہ نہ اس کو سمجھانا ہے, یا اس کا بستر علیحدہ کر دینا, یا اس کو مارنے والی جو بات پچھلے ہفتے اس پر ختم ہوئی تھی کہ مارنا ہرگز یہ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اس کے اتنا مارنا کہ اس کے زخم ہو جائیں, نشان لگ جائیں اس کے جسم پر. تو میں نے اس مثال بھی دی تھی پچھلے ہفتے کہ صرف اتنا ہے کہ اس کو احساس ہو جائے, کیونکہ یہ جب آدمی ہاتھ کسی کو لگاتا ہے تو جب ہاتھ لگاتا ہے تو آدمی دوسرا آدمی وہ تھوڑا سا اس کو ہوتا ہے کہ یہ اس نے میرے ہاتھ لگایا. اس کو کہتے سائیکولوجیکل, ایک دماغی ذہنی ایک ہوتا ہے, الرٹ ہوتا ہے آدمی کہ اس نے میرے ہاتھ کو لگایا. اور یہاں تو یہ حال ہے کہ آپ بچوں کو ہاتھ لگائیں تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. آج کل تو ویسے ہی قانون ایسا ہے کہ آپ ہاتھ لگا بھی نہیں سکتے, چاہے آپ کا ذہن صحیح ہو یا گندا ہو وہ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے. بچہ رو رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, قانون ہے. اپنا نہیں بچہ, دوسرے بچے, دوسرے بچوں کو. تو ہاتھ لگانا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہر وقت ہوتا ہے, ہر جگہ پر ہوتا ہے. آدمی کسی کو بچے کو پکڑ لیا کہ دیکھو میری بات سنو, یہاں کھڑے ہو جو نماز کے لیے, یہ نہ کرو. تو عورت کو بھی ایسے سمجھانا, اور گھر کے اندر یہ تھوڑی سی سختی رکھنا, اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ. اور پھر بھی نہ سمجھ میں آئے پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مرد عورت ان کے گھر والے دونوں اکٹھے ہو جائیں, یعنی جو عورت ہے بیوی ہے اس کے خاندان والے آ جائیں اور ادھر مرد کے خاندان والے آ جائیں, اور اگر ان کا جو آپس کا تنازع ہے, لڑائی جھگڑا ہے, اس کو وہ آ کر ان کے آپس میں صلح کروائیں. اور یہ اس کی پھر آگے تفصیل ہے. اچھا, بچوں کا, اب یہ تو بیوی کا حق ہے, بچوں کے حقوق, بچوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے شروع سے ہو جاتا ہے, شروع کے عورت ہی اچھی ہو, پھر حاملہ ہو عورت تو اس کے حمل کے دوران عورت کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے, کیونکہ ہر چیز کا اس کے بچے پر اثر ہوتا ہے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں جو یعنی کہ صحت کے لوگ, یعنی صحت کے بارے میں طبیب حکیم, کہ بلکہ جو دائیاں ہوتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں بڑی عمر کی رسید, وہ بتاتی ہیں اپنے بچوں کو, دیکھو تم نے آج ساگ کھا لیا, بچے کو تکلیف ہوگی, یا بچے کو دودھ پلا رہے ہیں اس میں تکلیف ہوگی. بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے صرف اس کی وجہ سے کہ اس نے دودھ اس کو پلایا, کیونکہ اس نے خود کوئی ایسی چیز کھا لی. اتنا اثر ہوتا ہے. اسی طرح دین کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر عورت کا یہ کام ہے کہ حمل ہے اور وہ جھوٹ بول رہی ہے, غیبتیں کر رہی ہیں, فلمیں دیکھ رہی ہیں, واہیات کام کر رہی ہے, نماز کو ترک کر رہی ہے, تو پھر وہ تو لازمی بات ہے کہ بچے پر تاثر شروع ہو گیا. کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ بچہ سنتا بھی ہے, آپ ان کو پتہ ہے کہ حمل جب ہوتا ہے لوگ اپنا کان لگاتے ہیں پیٹ کے ساتھ, تو ان کو بچے کی بھی آواز آتی ہے, اور کہتے ہیں بچے کو ان کی بھی آواز آتی ہے, یہ نہ بولنا, بچے کو آواز آتی ہے. اگر میاں بیوی اکیلے میں خلوت میں بیٹھے غیبتیں کر رہی ہیں, کوئی گناہ والی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ بچہ بھی سن رہا ہے, وہ بچہ سن رہا ہے, ہر چیز کا اس کو احساس ہوتا ہے بچے کو. یہ علیحدہ بات کہ اس کو شعور نہیں ہے, اس کو رجسٹر نہیں کر سکتا, مگر اس کے کانشس میں چلا جاتا ہے. عورت کے اوپر جو مزاج ہوتا ہے وہ بچے پر اثر ہوتا ہے. اگر عورت ہر وقت ڈپریس رہتی ہے تو بچہ بھی ڈپریس رہتا ہوتا ہے, अगर औरत हर वक्त हंसती रहती है तो बच्चा भी खुश खुश होता है, यानी कि हर वक्त उसकी तबीयत खुशी खुशी वाली होती है। तो ये यहाँ से शुरू करना चाहिए कि औरत को चाहिए कि अपनी खाने पीने का भी और दीन का भी, मसलन खाने पीने की चीज़ों में ये फरमाते हैं कि ये जो तिल तिल है, तिल तिल ये इसका जो होता है उसका पेस्ट होती है वो खिलाते हैं औरतों को, खजूरें खिलाते हैं। और कुरान पाक में मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में जो इशारा है कि अल्लाह तबारक तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम को जब हमल हुआ तो उनको अल्लाह पाक ने फरमाया फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी, कुरान पाक की सूरह मरियम में है कि उनको दो तीन चीज़ें यहाँ बताई गई कि क्या खाना है। रुतब यानी कि वो रुतब जो खजूर होती है वो फरमाया वो खाओ, पानी पियो, ये भी अल्लाह पाक ने इस चीज़ का बताया मरियम अलैहिस्सलाम को खाना क्या है। तो ये औरत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उसके फिर बच्चों पर असर होता है उसका। अब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद तहनीक जिसको हम कहते हैं गुड़ती देना, तो ये सुन्नत असर है कि बच्चा पैदा होते ही कोई उसके मुंह में कोई चीज़ ना जाए। आजकल तो डॉक्टर फौरन ही कोई विटामिन दे देते हैं कोई ना कोई, या कहते हैं जी नहीं 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 ये खतरनाक है ये चीज़, असल खिलाना नहीं होता खजूर, उसका सिर्फ जो उसका यानी कि मिठास होती है लुआब होता है वो लगाना होता है बस तालू पर, यानी आप उंगली पे थोड़ा सा ऐसे लगाकर बच्चे के तालू पर आप लगाएंगे या ज़ुबान पर तो उसको वो चाट लेगा बच्चा, ये गुड़ती हो गई ये किसी नेक आदमी की। तो फिर उसका खतना है अगर बच्चा है और फिर उसके अकीका है बच्चा है तो दो दो बकरी होते हैं बच्ची है तो, और उसी सातवें दिन ही करना सुन्नत है, इसमें इख्तिलाफ है मगर सातवें दिन सेवन्थ डे होना चाहिए। ये तो हो गई ये चीज़ें, फिर उसका नाम रखना, नाम अच्छा रखना चाहिए, ये भी हकूक है वालदैन का अपने बच्चों की लिए हक है उनका। हदीस पाक में तीन हक है, नाम रखना अच्छा, उनको अच्छी यानी कि तालीम देना, फिर उनको निकाह कर देना, उनका शादी कर देना ब्याह देना, नाम उनका अच्छा रखना चाहिए, पसंदीदा अल्लाह के नाम है अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान। फिर उसके बाद बच्चों की तालीम का ख्याल रखना, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में वअमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, वही जो मैंने बात की कि बीवी का भी वही और बच्चों के साथ भी वही, घर के अंदर बताना नमाज का वक़्त है सबको ऐलान कर देना घर में, जैसे नमाज होती है मस्जिद में अज़ान होती है घर के अंदर ऐलान करना ये बाप के लिए ज़रूरी है, ये उसका ज़िम्मा है, चाहे वो पढ़े ना पढ़े वो उसका ज़िम्मा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं पढ़ते, इसका ज़िम्मा कि जितनी इसकी इख्तियार में है वो काम करे। बीवी को कहना देखो औरत नमाज का वक्त हो गया नमाज अदा कर लो, और औरतों को चाहिए अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें घरों में, मर्द हजरात बाजमात पढ़ें, और औरतों को चाहिए कि अव्वल वक्त में पढ़ें क्योंकि वो थोड़ी सी इसमें सुस्त होती हैं, तो क्योंकि हमारा क्योंकि जमात का टाइम होता है हमें पता कि एक बजे ही जोहर पढ़नी है, औरतों को तो ये होता है कि कोई बात नहीं अभी काफ़ी टाइम है, खासकर जब समर के दिन होते हैं तो औरतों को वो लापरवाही हो जाती है या भूल जाती हैं और वो जोहर का वक्त इतना दूर चला जाता है कि असर के करीब चला जाता है। बच्चों को बताना कि देखो आओ नमाज पढ़े, बच्चों को लेकर आना फजर की नमाज में जोहर की नमाज में, जहां तक इख्तियार हो अपना इख्तियार इस्तेमाल करना कि देखो नमाज का वक्त हो गया चलो तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया, उनको समझाते रहना थोड़ा थोड़ा समझाते रहना और हिकमत के साथ, यहां भी हिकमत चलेगी सिर्फ दूसरे लोगों के लिए तबलीग नहीं मगर घर के अंदर भी हिकमत चलती है, और कोई चीज जबरदस्ती नहीं होती घरों में भी जबरदस्ती नहीं होती। मैं तो यह कहता हूं कि अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है तो आप तबलीगी जमात वालों का जो तरीकाकार है उसको इस्तेमाल करें घरों में भी, तबलीगी जमात वालों के बड़े उसूल होते हैं, जो तबलीगी जमात वाले उनके बड़े अच्छे उसूल हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक फरमाया अल्लज़ीन यस्तमीउन अल-क़ौल फयत्तबिउन अहसना, के उनमें से ऐसे लोग हैं अल्लाह के बंदे के जो लोगों से अच्छी बातें ले लेते हैं, अगर तबलीगी जमात के अंदर कोई अच्छी बात है उनको ले लो, वो कहते हैं कि ये प्यार मोहब्बत के साथ आप लोगों को समझाओ तनकीद तनकीस ना करो, वो हर वक्त आपको कोई ना कोई खाना खिलाते रहते हैं प्यार मोहब्बत से, तो यही आपने घर के अंदर बच्चों के साथ वही मामला करना है, आपने उनसे ज़बरदस्ती नहीं करवानी, ये नहीं कि आपने मेरी बहन के बेटे के साथ ही शादी करनी है, आपने मेरे भाई के जो रिश्ता आपका किया था हमने बचपन में पाकिस्तान में उसका बेटा है, मेरी मेरे भाई की बेटी है, तो उसने यहाँ आना है, तो आपने उसके साथ शादी करनी है, नहीं करनी तो खसमा नुखा बैठा रहे 10 साल बैठा रहे घर के अंदर, शादी नहीं मैं करनी। ये कौन सा दीन है? और फिर ऊपर से यहाँ पे दीन ले आना, जे मौलवी साहब तू इन्हें समझा, आप समझाए मौलवी साहब इसको, ही मेरी बात नहीं मानता। तो अब यहां पे दीन आ जाता है, तुम्हें पता नहीं है कि बाप की बात को मानना चाहिए। दूसरी तरफ वो शराब की दुकान रखी हुई है, उसको कहता है शराब बेच, जब शादी का मौका आता है तुझे पता नहीं है बाप की बात माननी चाहिए। तो ये यानी पिक एंड चूज है, जहां पे अपनी मर्जी चली वहां अपनी मर्जी चला ली, जहां पे दीन आया दीन को ले आई घर में। तो एक 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 पूरा एक तरीका होना चाहिए घर के अंदर। बच्चा बच्ची नहीं मानते, रिश्ता देकर पहली तो बात है, अगर आपने उनकी तरबियत अच्छी की है तो बच्चा यहूद से हिंदू से यानी गैर मुस्लिम से शादी तो करेंगे नहीं। और जो लोग कर लेते हैं उनको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि ऐसी औरतें जब तक पक्की नहीं हो जाती अपनी इस्लाम में, तो वो फिर मसला बन जाता है बच्चों के लिए, आगे बन जाता है मसला, एक बड़ा ज़बरदस्त मसला होता है वो, ईसाइत या जो भी है वो घरों में वही राइज हो जाती है। इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं है शादी कर लो वो मुसलमान औरत हो गई है उसने कलमा पढ़ लिया। हाँ उसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है, आप उसको काफर नहीं कह सकते, मगर मैंने आपको इशारा कर दिया कि थोड़ा सा ख्याल के साथ करना चाहिए। और ये तो पहले से आपने जैसी तरबियत की होगी वैसे मैंने बात ख़त्म करनी है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, ये तो सिर्फ मैंने टच किया है कि बच्चों की तरबियत के बारे में, उनको तालीम कैसे देनी है, उन पर ज़बरदस्ती नहीं करनी, किसी चीज़ के अंदर आप ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। और एतदाल के साथ, ये नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना है, जेरा पुत्र तेनू चाहिए फ़ोन आ लै, जेरा कंप्यूटर तू हाथ लाओ तो आ लै, ये भी बात गलत है। या बच्चा मांग रहा है, मांग मांग के पागल हो गया बेचारा, तो आप उसको लेकर नहीं देते, वो कह रहा है मैंने बाइक लेनी है, आप कहते नहीं बाइक नहीं लेनी, बनाई मैं 5 साल गुजर गया उसको बाइक नहीं लेकर देनी, नहीं नहीं सादा होना चाहिए, सादगी होनी चाहिए, ये वाला शू ले ये अच्छे शू हैं, उसका दिल नहीं कर रहा तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं उस पर। ऐसे ऐसे बच्चे बिगड़ गए बड़े होकर, जिनके जिनके माँ बाप ने उन पर ऐसा दीन उन पर सौंप यानी उन पर इम्पोज किया कि वो असल दीन नहीं था, वो खुद ही कंजूस थे, खुद ही कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए बच्चे बिगड़ गए। उनको ये बताते रहे कि ये दीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, असल बात ये थी वो अपनी जेब से निकालना नहीं चाह रहे थे, तो बच्चे बिगड़ गए, बड़े हुए बच्चों का गेट लॉस्ट डैड, यू नेवर स्पेंट अ पेनी ऑन अस। और जिनको बहुत ज़्यादा दे दिया माल दौलत बच्चों को, वो भी बिगड़ गए, वो भी हाथ से निकल गए। और उनको आप बात समझ, अब वो इतना बिगड़े कि फिर जिंदगी के अंदर जो भी आता है हराम भी आ जाए उस हराम को भी ले लेना। एक बात को बात खत कर खर के ख़त्म करता हूँ, मैंने पिछले हफ्ते की बात की थी, देखो मैं यहाँ मसाइल आपको सिर्फ वैसे उन पर टच करता हूँ, बाकी उनका मसला आपने खुद उलमा से पूछना है, हर हर का इंडिविजुअल होता है। मैंने बात की थी पिछले हफ्ते आपसे कि आजकल क्योंकि नेसेसिटी है, मोबाइल फ़ोन नेसेसिटी है, तो आपने अपने अगर आप पिछले हफ्ते का बयान सुनेंगे, अगर आपकी औरत को चाहिए ये आपका हक है कि आप उसको लेकर दें, क्योंकि ये एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो गई है। मैंने ये भी समझाया था कि कहाँ तक कैसे, अब मैंने ये भी बात कही थी पिछले हफ्ते कि अगर उसको गाड़ी की ज़रूरत है तो आपका ये काम है कि आप उसको गाड़ी भी लेकर दें, उसका इंश्योरेंस भी कराएं, उसका फ्यूल खर्चा आप दें। मगर इसका मतलब ये नहीं है मेरी ख्वातीन जो घरों में बैठी हैं कि अब वो अय्याशियाँ करें और गाड़ी भी वो रखें रोल्स रॉयस, कि मैंने तो लेनी है तो रोज़। हाँ अगर मर्द के पास है इतना तो ठीक है, मगर अगर औरतें काम कर रही हैं कमा रही हैं तो फिर घर के अंदर मैंने इशारा कर दिया साथ साथ चलना चाहिए, थोड़ा सा एहसास करना चाहिए औरत को कि देखो ये तो ठीक है मैं बच्चों को रन करती हूँ मस्जिद यानी कि बच्चों को लेकर आती हूँ स्कूल से लेकर जाती हूँ, इसका तो मेरा खबर दे रहा है मुझे पैसे, मगर ये जो मैं फालतू इधर उधर कर रही हूँ ये तो नहीं चाहिए कि मैं अपने बंदे से लूँ। तो ये खैर सारे मसाइल हर बंदे का इंडिविजुअल है, मेरा अलग है आपका अलग है आपका अलग है आपका अलग है, आपने अपने उलमा से पूछना है, मेरी बातों पर ना आए कि फतवा दे दिया मौलवी साहब ने फतवा दे देता वह हूँ सानू करना ही पैना। तो आपने पूछना है कि जी मेरी औरत कह रही है कि मुझे गाड़ी चाहिए, आपने उसके पेट्रोल का खर्चा देना है, ये मेरी औरत कह रही है मैं ये करना चाह रही हूँ, ये आपका हक है। हर घर का अलग अलग मसला है, मैं यहाँ कोई फतवा नहीं दे सकता किसी का, ये एक सब पे कह दूँ एक ही लाठी से, यानी कि सब यू नो एवरीवन घरों में जाओ जो औरत कहती है उसको ले दो, वो कहते हैं मुझे BMW ले जो ले दो, ये नहीं मैंने कहा, ये हरगिज़ नहीं मैंने कहा। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने उसको सौंपा है कि आपने बच्चों को स्कूल लेकर आना है, लेकर आना है, आपने उसको गाड़ी सिखा दी, उसको टोयोटा यारस से भी काम चल जाएगा और उतना पेट्रोल चाहिए कि वो जाए वापस ले जाए, वापस आए कुछ शॉपिंग करनी वहां चले जाए। मगर अब वो कहती नहीं नहीं मैंने रोल्स रॉयस लेनी है और तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है और मैंने जाना है लंदन जाना है अपनी सहेलियों के साथ। सॉरी, ये तो फिर यू आर गोइंग ओवर द टॉप नाउ। और तू कमा भी रही है, तेरा भी 1000 पाउंड हफ्ते का तू कमा रही है, तू डॉक्टर है और तू कहती है सारा खर्चा भी तू ही दे, अयाशा भी मैं करा। खैर बात ये हर आदमी के अलग अलग बात है। बहरहाल हर आदमी ने अपने अपने उलमा से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये आजकल के मसाइल हैं, उलमा से बैठना चाहिए और इनको सीखना चाहिए, लड़ाइयों झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वह मालीन अलबलाग सुनत अदा कर। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم اکبر صف کو تو سنبھالے اپنی ایڈیوں کو سفید لائن پہ رکھ لیں پلیز پٹ یوز آن دیئر وائٹ لائنز سٹریٹ اینڈ یوروز مل مل کر کھڑے ہو جائیں الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.